वो फूलों के ही अधिक श्रृंगार करते हैं, सोने और जवाहरात और हीरों के नहीं। वहाँ पर एक होता है मूंगा जैसा, जिसको कहते हैं क्या, काला काला उसमें दाग होता है, लाल लाल होता है, जिसे पहले सोना को वजन करने के लिए रखा जाता था, वो मूंगा फूल नहीं है, वो फल है, गुंजा के फल के वो माला करते। और पांच फूलों के रंग के फूलों की वैजयंती माला पहनते थे, जैसे पांच रंगों के, कभी कभी सात रंगों की होती थी, उसमें तुलसी का पत्ता और जोड़ देते, उसकी मंजरी लगा देते, उस पर भौंरे गुंजार करते थे, उसमें तुलसी के मंजरी में मधु होता है, बहुत मधु, भौरे उसके लिए बड़े ललचते हैं, मधु मक्खी उस पर बैठती है। और वृंदावन के जितने फूल हैं, बेली, चमेली, जूई, मूंगा, मोत्रा, ये सब उस पर बहुत ही सुगंध है, और उसमें बहुत मधु होता है, भौरे उस पर बहुत, तो उसकी माला पहनते, उसकी ये पहनते हैं, करधनी, अंगद, बाजूबंद, हाँ, फिर यहाँ की नथनी भी, सब कली की बना, उसमें ऐसे कली की सब चीजें बनाते थे, अंगद इत्यादि आभूषण सब कलियों के बनते थे, मुकुट कलियों के बनते थे। राधा जी क्या केश का श्रृंगार करते थे, तो उसमें जूड़ा बांधना होता था ना, तो जूड़े में वो माला बनाकर फूलों की, और उससे उसको बांधती थी, डेकोरेट करती थी गोपियां सभी। उसमें एक फूल होता है पीला पीला, क्या नाम, स्वर्ण चंपक, चंपक पुष्प, बहुत ही सुगंध, बहुत ही अलबेला, बहुत ही मधुर और कोमल, और राधा जी का अंग का होता है, वो उसको झुला देती थी, यहाँ से वो झूलता था, ऐसे ऐसे फूलों का डेकोरेशन सब करते थे। कृष्ण बहुत अच्छा श्रृंगार करना जानते थे, यदि वो किसी को फूल का हार बनाया तो वो समझ जाती थी ये कृष्ण ने बनाया, और राधा जी जब बनाती थी तो कृष्ण इत्यादि सभी समझ जाते ये राधा जी का बनाया, एक्सपर्ट इन ऑल आर्ट्स, ऐसा कोई आर्ट नहीं था इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। हाथों की उंगलियां बहुत स्टाइल की, एकदम कोमल कोमल, लंबी लंबी और पतली, एकदम अंत में पतली, हाँ, पैर में भी इतना सुंदर श्रृंगार, नेचुरल, आर्टिफिशियल उसमें कोई, अंदर और बाहर में सब कुछ नेचुरल, कोई चीज देखा होती नहीं। क्या कर रहा है लेकर के एक घंटा से इसको, इनको कुछ कहा नहीं, अगले समय के लिए रखो, तुम्हारे घर में अधिक दिन रहेंगे, आज यहाँ से फिर जाना, फिर वहाँ से फिर वहाँ जाना, बहुत दूर पड़ जाएगा, यहाँ सारी रसोई की व्यवस्था कर, अब जा करके फिर रसोई बनाएंगे, हमारे प्रेम की तुलना कहाँ से। एक आदमी मान लिया बहुत तरह से सेवा कर रहा, यशोदा मैया कृष्ण की कितना सेवा करती है, करती है ना, प्राण मन शरीर एक कर देती है कृष्ण की सेवा में, किंतु राधा जी और गोपियों के आंखों में क्या जादू है जो कृष्ण उसको भूल करके उनसे मिलना चाहते हैं, क्या बात है। कोई चीज देती है कृष्ण को, लाती हैं अपने घर से, या कृष्ण उनको देते हैं ना? क्या चीज है उसमें? उनकी आंखों में यदि एक आंसू आ जाता है, कृष्ण नहीं सह सकते। प्रेम कोई माप तौल की चीज नहीं है जिसे कोई माप तौल कर सके, और सब चीजों का माप तौल हो सकता है। यही एक प्रेम अनोखा चीज है जो विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले कृष्ण को भी वशीभूत कर देता है। कुछ लेना देना ऊपर से नहीं रहा, किंतु मान लिया कि एक आदमी ने लाखों डॉलर खर्च किए और सब प्रकार से व्यवस्था सब कुछ, और एक आदमी ने प्रेम से अपना हृदय ही दे दिया, दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो आंखों के माध्यम से जो प्रेम पूर्वक जो दिया जाता है अपना हृदय, वो ऊपर से कोई माप तौल नहीं है उसकी, देखना। कभी कभी बाहरी उसका सिम्टम एक होता है, भीतरी तक सिम्टम कोई जानता नहीं, न देखा जा सकता ये प्रेम कहाँ है, किस रूप में है, क्या है। बाहरी कुछ सिम्टम, उसका जो स्वरूप लक्षण है नहीं कोई बतला सकता। स्वरूप लक्षण समझती है? कोई नहीं बतला सकता। तब उसका तटस्थ या ऊपरी जो बाहर लक्षण है वो क्या है? कभी आंखों में आंसू आ गए, चल चला गया। हृदय में जाने क्या एक अद्भुत चीज होती है जिसको व्यक्त नहीं कहा जा सकता, वो कभी कभी उमड़ करके आंखों में आंसू के रूप में आ जाता है। जो पारखी होता है उसको वो परख लेता है। कृष्ण जी जगत में सबसे बड़ी पारखी, प्रेम का मूल्य जानते हैं, बिक जाते हैं उस प्रेम पर। नारद जी भी उनके शिष्यों में से एक है, वो लोग इसकी पारखी है। रूप सनातन जी ये सब पारखी है। क्या है? बाजार से $100 की कोई अच्छी सी स्वादिष्ट चीज लाई ना, और कोई एक साधारण चीज ही बड़े प्रेम से लाई। विदुरानी जी ने छिलका लाया ना, और सत्यभामा रुक्मिणी जी ने लाया तरह तरह के भोग लाए। कृष्ण वो कौन सा पसंद होगा? छिलका कोई खाने की चीज नहीं है, किंतु उसमें प्रेम भरा पड़ा है। कृष्ण प्रेम देखते हैं, ये चीज नहीं देखते हैं कि ये क्या किए, कोई चीज लाया इसका मूल्य क्या है, क्या मूल्य नहीं है, ये नहीं देखते। वो तो स्वयं परिपूर्ण है, आत्माराम है, आप तक घाम है, वो नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? किसके किस वस्तु में प्रेम है। यदि कुछ भी नहीं तो आंखों में प्रेम है तो वो तो उसी से ले लेते हैं और उसी से वशीभूत हो पड़ते हैं। ये प्रेम चीज है। ब्रज में प्रेम की सरिता बहती है, अथाह समुद्र वहां लहराता है, कहीं नहीं है। वो बैकुंठ में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या कर रहा है? ये बातें जा रही है। तो वो कैसेट क्यों नहीं लगा दिया जो है? तो दिन वो ऐसे किए हुए हैं। वो हुआ ये कि कृष्ण गए, ये दोनों दलों में सुलहनामा हो जाए और युद्ध ना हो। इतना नरसंहार होगा, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी, इसलिए इनकी रक्षा की जाए। जबकि वहां से चलने लगे तो अर्जुन की बात सुना, युधिष्ठिर की बात सुना, भीम की बात सुना, नकुल, सहदेव, कुंती, सबकी बात उन्होंने सुनी। द्रौपदी के पास में गए तो वो रोने लगी, और तो बड़े खुश है किंतु द्रौपदी रोने लगी। किस लिए रोने लगी? सखे, आप जो संकल्प करेंगे वो सत्य होगा। तो आप जा रहे हैं युद्ध के लिए, ये युद्ध न हो, सुलह हो जाए, तो ये सुलह हो ही गया, आप चाहेंगे और वो काम नहीं होगा। तो मेरे केस का क्या होगा, मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? मैंने ये प्रतिज्ञा की है, आप तो जानते हैं, तो मैंने क्या प्रतिज्ञा किया, तो हाँ मैं जानता हूँ क्या। जो दुशासन अपने भुजाओं के बल पर हमको नंगी कर और भरी हुई राज्यसभा में दुर्योधन के जंघे पर बैठाना चाहता था, हमारी लज्जा का अपहरण करना चाहता था, उसके रक्त से ही, भांत से निकल करके जो रक्त आएगा उसी से अपने जूड़े को बांधूंगी, नहीं तो नहीं बांधूंगी। और दुर्योधन जो यहाँ पर बैठाना चाहता, यहाँ ऐसा कर रहा था, उसका भी वहां से जंग टूटेगा और रक्त से बांधूंगी, इतना घोर अपमान। तो फिर आप जा रहे हैं तो सुलह हो जाएगा, तो ये सब कैसे बातें होंगी? रोने लगी तो कृष्ण अपने दुपट्टे से, पीताम्बर से उनका आंखों का आंसू पोंछा। तू क्या चिंता करती है, हमारी प्रतिज्ञा रह जाएगी किंतु तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। उनको सांत्वना दे करके गए। जब वहां गए तो दुर्योधन ने सोचा, ये कृष्ण है, ऐसे खातिरदारी करो जिनका मन बदल जाए, गाजे बाजे के साथ में उनको रिसेप्शन दिया और ठहरने के लिए दुशासन का सोने का घर भवन था उसमें ठहराया, और उसमें 56 प्रकार के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोग लेकर के कृष्ण को खिलाने के लिए लिया है, और बड़े अदब के साथ, बड़े प्रेम के साथ में ऊपर का दिखावटी, और उनको कहा कि आप प्रसाद पाइए, भोजन कीजिए, यहाँ पर विश्राम कीजिए, तब फिर सभा में चलिए, वहां पर फिर बातें हों। तो कृष्ण बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, सभी कुछ था, उन्होंने कहा जी देखो आप मेरे समधी हैं, समधी जानती है, मैंने उनकी किनकी सगाई हुई थी, सांब की, सांब कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा के साथ में शादी हुई थी, और अपना पुराना रिश्ता तो ही है कुंती जी, और सुभद्रा जी के साथ में अर्जुन की शादी हुई, बहुत से नाते हैं। मैंने कहा जी देखो मैं जिस काम के लिए आया हूँ, एक काम के लिए आया, पहली बात तो यदि काम हो जाता तो मैं तुम्हारे यहाँ काम, मैं भोजन करता तो अभी काम तो हुआ नहीं, दूसरी पर मैं दरिद्र भूखा नहीं हूँ, जब कोई प्राण हमारे चले जा रहे हैं इसलिए हमको खा लेना चाहिए, तुमको भूख नहीं है भाई, तीसरी बात यदि प्रेम होता है तो भूख नहीं होने पर खाया जा सकता है, मित्र बंधु अपने कुटुंबी के यहाँ, तो तुम तो हमारे मित्र हो नहीं, हमारे साथ में प्रेम नहीं करता क्या? तो तीन बातें हुई, मित्रता तुम्हारे अंदर में, प्रेम तो हमारे लिए है नहीं, मैं जानता हूं, दूसरी बात हमारा काम अभी पूरा हुआ नहीं, और तीसरी बात क्या, मैं क्या, मैं भूखा भूखा तो हूं नहीं, जो भूख लगी है और हमको कहीं नहीं भोजन, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाता, और नहीं इनकी जरूरत है, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो, उनको समझा दो, जो तुमको जाकर के समझा दो। जी अब जाना संभव नहीं, अब देर हो गई, हम 9 बज जाएगा, भोजन करना है, आज मैं बातचीत अधिक नहीं करूंगा, अभी जाकर के विश्राम करूंगा, समय नहीं पाता। सभा में गए, सभा में इनको कैद करना चाहते, ऐसे नहीं हुआ तो साम दंड, साम दाम दंड भेद, अब इनको कैद कर दिया जाए। और जब इनको कैद करना चाहा तो कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया, अर्जुन को दिखलाया गया जैसा, उसमें भीष्म पितामह ने जल्दी करो नहीं तो मरेगा भी, अरे अंधा धृतराष्ट्र अपने बेटे को शासन क्यों नहीं करता, जल्दी से कृष्ण के चरणों में गिर पड़ो। कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। कौन है? यदि ठीक होना है तो कोई ऐसा मिल जाएगा वो जो एक साधारण दवा से वो ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं ठीक होना है तो लाख डॉक्टर हों चाहे विश्व विख्यात हों, उनकी दवा भी नहीं काम करेगी, और वैसा संयोग भी नहीं उपस्थित होने देंगे। अभी इंडिया में हमारे एक बहुत बड़े धनी आदमी हैं, करोड़ों रुपए हुए हैं, और उनको हो गया कैंसर, उन्होंने इंडिया में दिखलाया, बॉम्बे में दिखलाया, फिर अमेरिका में दिखलाया, कहाँ कहाँ दिखलाया, बस हो गया खत्म, लाखों करोड़ों रुपए उनके खर्च हो गए, कुछ नहीं। अब यदि अच्छा होना जाता है तो बस। एक बार व्यास जी किसी चीज की दवा खोज रहे थे, जब कट जाता है तो घाव हो जाता है तो उसकी दवा खोज रहे थे, धन्वंतरी, व्यास धन्वंतरी, वो नंगे पैर चल रहे थे, उनका पैर कट गया था, वैसे ही चलते रहे। तो एक दिन चलते 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 कोई एक लता है जिसका दूध यदि लग जाए लता का, तो वो यदि कटा हुआ कोई घाव हो या कट गया हो तो झट वो एकदम मंत्र की तरफ में काम करता है और ठीक हो जाता है। तो चलते चलते उनका पैर कहीं उलझ गया और पैर में वो लता ही लगी और उसका रस उसमें लग गया। देखा जी सर, एक दो दिन में ही ठीक हो गया, उस लता को उन्होंने पहचान लिया था। जाकर मुझे देवी जी, मैं बरसों से खोज रहा था, नहीं मिली, आप कल मैं पैर उलझ गया, मैं गिर पड़ा और उसमें पैर में उसमें रस लग गया, वो ठीक हो गया, तो आपने पहले क्यों नहीं हमको दर्शन दिए? तो औषधि बोली कि समय पर सब काम होता है, समय के अनुसार में होता है। कर्म में मनुष्य का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म अधिकार है, किंतु फल तो उसके अधिकार में नहीं है। दुर्योधन ने हो क्रोध कितनी चेष्टाएं की, ये पांडवों का सब कुछ हड़प लें, सारी चेष्टा लगा दी और विश्व के समस्त राष्ट्रों का सहयोग पाया, उसकी सेना में बहुत कितने आदमी आदि अस्त्र शस्त्र से सब सुसज्ज, किंतु हार गया, उसके बंद उसके लड़ाई युद्ध में कोई बाकी नहीं बचा, उसके तरफ में सभी मारे गए, केवल 3 आदमी बचे वो जो न्यूट्रल थे, मारे गए सब, राज्य नहीं मिला। पांडवों ने अधिक प्रयास नहीं किया, इनको मिल गया राज्य। तो कर्म में, कर्म हम करते हैं किंतु कर्म में हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। यदि फल में अधिकार होता लाखों लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, उनको सुख क्यों नहीं मिलता? मिलता है? नहीं मिलता है। हम चेष्टा करते हैं कि बुढ़ापा न आए, क्यों आती है? हम चाहते हैं जो मरे नहीं, मर फिर भी मरते हैं, चेष्टा सही नहीं होता है, उसके लिए उपयुक्त कुछ चेष्टा होनी चाहिए। हाँ, एक स्थिति है जब आदमी नहीं मर सकता, क्या? यदि भगवान का भजन करके आत्मा को रियलाइज करे तो इस शरीर को कपड़े की भांति निकाल करके रख देगा, आत्मा शरीर शब्द की उसका जन्म मरण नहीं हो सकता, सुखी रह सकता। ये विद्या भारतवर्ष में ही केवल है, आत्मज्ञान इसका अतिरिक्त कहीं नहीं। ऋषि लोग ऐसा करते थे, ऋषि बढ़कर के और कोई विद्या नहीं आत्मज्ञान। यदि आत्मज्ञान है तो सब कुछ हो जाए, तस्मिन् ज्ञाते सर्वम् इदम्। उसके जाने से सब कुछ जानना हो गया, कुछ बाकी नहीं रहता, बल्कि ये जगत की जो यूनिवर्सिटी इत्यादि है ये क्या है, अच्छा धन उसको ढक देती है उस ज्ञान को। हमारे भारतवर्ष में माता पिता गुरु छोटा सा जो शिक्षा देता था अक्षर का, अक्षर माने क्या, जिस चीज का विनाश नहीं है, पहले सबसे पहले उस बच्चे को अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। क्या अक्षर, नक्षर, जो कि विनाश नहीं होता, ध्वंस नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वो चीज क्या है, दो है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा का ध्वंस नहीं होता, जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, वो चीज है अक्षर। इसमें आत्मा से भी बढ़ करके परमात्मा है, परमात्मा आत्माओं में भी जो श्रेष्ठ है वो है परमात्मा। तो वो परमात्मा का ज्ञान जब हो जाएगा तो आत्मा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसलिए पहले ओंकार पढ़ाया जाता है, ओंकार, इसी का ये कैसे जाना जाएगा, उसी को थोड़ा सा और बृहद कर दिया तो हो गया गायत्री। गायत्री को और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया तो उसे सारे वेद, शारीरिक, साम, चतुर्वेद, सब कुछ गायत्री में है, और ओंकार में सब कुछ है। ओंकार से गायत्री, गायत्री से चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, सब कुछ। इस तरह से परमात्मा ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। वो कैसे होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा, चाहे लाख सार पट हो। वो कैसे होगा, यदि किसी ने शरणागति उनकी की, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण, मैं कुछ नहीं आता, हे प्रभु आप सब जगत को देखते हैं, आप बड़े दयालु हैं, मैं आपके शरणागत होता हूँ या होती हूँ, आप हमारे ऊपर में दया करें, मैं कुछ नहीं जानता। तो जो चीज ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, कर्म से, योग से जो नहीं जाती, बहु विद्या से नहीं जानी जाती, क्या श्लोक, नैमात्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से नहीं होगा, चाहे लाखों प्रवचन कोई दे रहा है, क्लास दे रहा है, नैमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया, बुद्धि से नहीं होगा, न बहुना श्रुते, बहुत सुनते हैं, बहुत दिन रात सुन रहे हैं, वेद उपनिषद सब पढ़ रहे हैं, सब मुखस्थ कर लिया, नहीं होगा। जम एव एष विणुते, जद वह देखता है कि ये हमारा कृपा पात्र है, वो कैसे होगा, उसका यदि चित्त द्रवित हो जाए, कोई रोए उसके सामने तो उसका चित्त द्रवित हो जाता है प्रभु का, उनके शरणागत होकर के कोई रोए, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो उस पर दया की वर्षा कर देते हैं। तेन एव लभ्य, उसी के द्वारा वो प्राप्त, उनका ज्ञान भी और वो भी प्राप्त होते हैं। बस एक उपाय है, यही भक्ति जिसको कहते हैं, शरणागति, और कुछ काम नहीं वहां पर करता है। मन भी जहां से लौट आता है, क्या है, जत वाचो निवर्तन्ते मनसा, मन भी अपने सारी इंद्रियों के साथ में लौट आता है, उसको समझ नहीं पाता, मन के भी विषय नहीं है, वो है आत्मा का विषय। इसलिए आत्मज्ञान या परमात्मा ज्ञान जो है ये है विद्या। ये यदि हो जाए तो सारी विद्या है यार, कुछ बाकी नहीं रहेगा, वो भी भगवान की कृपा से होगा, या कोई ऐसा रियलाइज सोल हो जिसके कृपा से होगा, ये कृपा सिद्ध चीज है। कृपा जबरदस्ती पैसे से नहीं खरीदी जाएगी, आप कृपा करने के लिए बात दें, जैसे ट्यूटर पढ़ाता है ना, कहते हैं कि तेरा बाप पढ़ाएगा, हम तुमको 100 रुपया हम तुमको दे रहे हैं महीना, तुम पढ़ाएगा क्यों नहीं, वहां नहीं चलेगी ये बात। ये आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान जहाँ मिलता है वहां पर सिर झुका दो। और इससे भी और बड़ी बात, आत्मज्ञान अपनी चेष्टा से मत करो, और उससे भी कुछ नहीं, या प्रेम यदि हो ना तो भिलनी की बेर खा जाएंगे, उसके बसीभूत हो जाएंगे, विदुरानी जी का केला छिलका खा लेंगे। एक आदमी यदि छिलका कुछ दे दिया, एक घास भी दे दिया प्रभु को, एक पानी भी, पत्रम पुष्पम फलमतोयम, पानी भी दे दिया तो उसे बसीभूत हो जाते। अरे कुछ नहीं दे सका, मीठी बोली तो है ना उसके पास में, कुछ ना दे सके मीठी बोली से उसको प्रसन्न कर सकता है। तो हाँ, तो इसके बाद में नहीं लिया, विदुरानी के घर में गए, और वहां जाने के बाद में उनको बड़ी भूख लग गई। क्यों भूख लग गई? क्योंकि विदुरानी जी उनको बहुत दिनों से खिलाना चाहती थी, और आज उनसे कहा नहीं कि आज हमारे घर में आइए, किंतु उनको बड़ी भूख लगी क्योंकि दुर्योधन के यहाँ कुछ नहीं खाए, और जा करके वहां पर पहुंच गए, पर जी अभी बड़ी भूख लगी है। विदुर नहीं थे, थी विदुरानी, विदुर जी तो थे नहीं, कहीं गए थे, कोई कहते हैं ये भिक्षा मांगने गए थे, अरे राजमंत्री थे, किंतु घर में उस समय कुछ थी नहीं, था नहीं। भुजाई ने देखा जे क्या खिलाएं, अभी जल्दी से आ गया, अभी रसोई बनाने में देर होगी, और ये करें ये भूख लगी है, रसोई बनाने में तो एक घंटा आध घंटा लगेगा, अच्छा तो पहले इसको खिला लूँ, तो इसके बाद में फिर कुछ खिलाऊंगे। बड़े प्रेम से केले ले आई और भूल गई, छिलका उन्होंने देना आरम्भ किया और केले को फेंक रही, प्रेम में पागल एकदम हो गई। कृष्ण ने वो छिलका खाकर के समा का, आज तक हमने उनके सत्यभामा रुक्मणी के राजभवन में इतने सुंदर चीजें खाई हैं, किंतु उसमें वो स्वाद नहीं। विदुर जी कहने ये क्या छिलका खिला रही है? कृष्ण बोले जी खबरदार मत पड़, चुपचाप रहो, तुम नहीं समझते, आज मुझको वो आनंद आ रहा है जो ब्रज में कोई गोपियां देती थी तो वो उसके बराबर ऐसा आनंद आ रहा है। ये प्रेम कहाँ? प्रेम उस केले में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, प्रेम कहाँ है? आंखें, हृदय तो व्यक्त नहीं कर सकता, व्यक्त कौन करता है? ये सब आंख इत्यादि, मुख, आंखें एकदम कह देती हैं, भाषा की कोई जरूरत नहीं है, कोई भाषा नहीं हो तो भी एक पशु भी आदमी की भाषा समझ सकता है, पशु की भाषा आदमी समझ सकता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, इसलिए जगत विश्व ब्रह्मांड का एक ही धर्म है प्रेम, इसी का नाम है अक्षर, ये प्रेम ही अक्षर है, वही भगवान का स्वरूप है, वही कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान। इस प्रेम को ढूंढने की जरूरत है, प्रेम है सब में, उसको प्योरीफाई करना है, विषयों के लिए प्रेम ना करके, अपने स्वार्थ के लिए ना प्रेम करके, कृष्ण से प्रेम करो, जीवों के प्रति दया हो, मैत्री भाव हो। पति के प्रति प्रेम नहीं होगा क्या होगा? मित्रता का अभाव होगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। यदि पति देखता है कि यह सुंदरी नहीं है और हमारी सेवा नहीं करती है, तो उसके प्रति मन खराब करके दूसरी शादी कर लेगा। पत्नी में भी वही है, पति को देखा जिसे लंगड़ा लूला हो गया, कोई काम नहीं कर सकता है, कोई पैसा नहीं लाता है, और हम कुछ भी नहीं करता है, तो उल्टा सीधा सुना देगी, छोड़ भी देगी। बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चा यदि हो गया गुंडा आवारा और माता पिता को मारता करता है, तो वो उसको प्यार करेंगे? किंतु कृष्ण का जो प्रेम है, आत्मा का प्रेम है, निश्चल शुद्ध है। अभी हम लोगों में सांसारिक प्रेम है, ये मोह कहलाता है, प्रेम नहीं है, मोह बंधन का कारण है। अशुद्ध प्रेम मुक्त करके संसार से कृष्ण के चरणों में सदा के लिए सुखी बना दे, इन दोनों में अंतर है। उसी को कहते हैं अक्षर, पहले बच्चों को अक्षर की शिक्षा पहले से ही, यहाँ पर जो आजकल विश्व में शिक्षा चल रही है वो अर्थ की शिक्षा है। कैसे अर्थ कमाए, उनको अक्षर की शिक्षा ही नहीं दी जाती, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, झूठ मत बोलो ये नहीं कहीं पढ़ाया जाता। अर्थ कैसा, यदि बदमाश लड़का भी है अर्थ कमा सकता है ठीक है, किंतु अर्थ से सुख और शांति नहीं होती। ऐसी चल रही है क्या? तो बंद करो बंद करो, बस बस प्रसाद पा करके विश्राम करें। मैंने कहा भाई कार में ले लेता, मुझ ऐसे ही हमको ले आना, हमको दिल्ली पहुंचा देना, फिर दिल्ली से आ जाना, बस यही जरूर, अधिक नहीं। हम गाड़ी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। बेटी अब तुम भी जाओ, रात हो गई, और अब अगली बार आऊँगा तो मैं ध्यान रखूँगा, तुम्हारे यहाँ अधिक दिन रहूँगा, तुम्हारा प्रेम नहीं मैं भूल सकता। देखो उनसे कह देना जी हमारा मठ बन गया, हम अपनी पत्रिका जो हमारी पत्रिकाएं दो हिंदी और बंगला उसमें हम लिख देंगे, उसका एड्रेस हम इनको दे दो। कहाँ गया एड्रेस ले, लिख लिया क्या? श्री विनोद बिहारी घोड़िया मठ। तो हम ना उसका एड्रेस लिख लेना, हम दोनों में छाप देंगे। अच्छा जरूरत होगी तो मठ कमांडर भी लिख देंगे, हम लोग तो प्रेसिडेंट मठ नहीं लिखते हैं, किंतु यदि होगा तो उसमें लिख देंगे, माधवानंद जी का नाम दे देंगे। और व्यवस्थापक रहेंगे इनका नाम। हाँ ठीक है, केवल नाम रहेगा।
यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की आगे आगे है,
देखिए प्रभु की इच्छा होगी, आप लोगों की सबकी इच्छा होगी तो होगा, आप ही के जगह में हो जाएगा वो भी होगा, और आप जो सेंटर खोल रहे हैं वही सेंटर का हो जाएगा।
वहाँ तो मैं क्या था, मैंने बड़ी दफा कोशिश की,
यहाँ से अधिक दूर है
नहीं, यहाँ पे बेटर है, मैं साइन आउट के पास है ना, साइन आउट की तरफ नहीं है, उधर है जहाँ ये साउथ मेन और साउथ पोस्टो के इंटरसेक्शन से छोटा सा पिछाड़ी,
यदि हो तो अच्छा है, हम लोग वहाँ पर एक सेंटर बना लेंगे और आपका भी काम चलता रहेगा खूब ठाक।
दोनों का काम ही
एक ही है,
एक ही काम।
अब मैं चलो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी,
मैं तो
तुम भी प्रसाद साथ पा करके जाना,
इसीलिए
बहुत अच्छा किया, मैं आपसे सहमत हूँ, आपका विचार बहुत सुंदर।